आज हम क्या विषय लेने जा रहे हैं? पढ़ा है आप लोगों ने नोटिस पर, गुरु कौन? तो इस संबंध में हम एक भगवद गीता के श्लोक को पढ़ेंगे और उसके ऊपर फिर विचार विमर्श करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शनम। तो ये श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जिसका तात्पर्य है, अनुवाद है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 6.3.19 श्लोक का कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं, ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो आज आप लोग यहां पर आए हैं सुनने के लिए कि गुरु कौन है। तो पहली बार कौन कौन आए हैं? जब कोई व्यक्ति कहीं भी जाता है तो कुछ इच्छाएं लेके जाता है, कुछ सोच के जाता है, कुछ पर्पस से आता है कि मैं इसलिए जा रहा हूं। तो ऐसे यहां पर भी सब लोग आए हैं तो कुछ मन में सोच के आए होंगे, कुछ सोच रहे होंगे प्रसाद अच्छा मिलता है वहां, कैसे ना कैसे घंटा निकाल देंगे, प्रसाद तो अच्छा मिलता है। कुछ लोग सोच के आते हैं कि जस्ट एक जिज्ञासा, इस क्या है ये सब, इसको हम क्या करते हैं, लोग देखने आते हैं, चलो क्या होता क्या है वहाँ। कुछ लोग हैं जो पढ़ेंगे गुरु कौन है, हाँ यार ये तो मेरे भी बहुत बड़ा प्रश्न रहता है हमेशा कि ये भगवान कौन है, मैं भी जानना चाहता हूँ भगवान कौन है, मैं भी अंदर से अनुभव करता हूँ कि कुछ मिसिंग है मेरे जीवन में, कुछ सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे को संतुष्टि नहीं है और मुझे तीव्र इच्छा है जानने की आखिर ये सब मैं कर रहा हूँ उसका क्या पर्पज है, आखिर ये सब किसने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, मुझे जानना चाहिए वो कौन है, वो व्यक्ति भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मेरा उनके साथ क्या संबंध है। तो आप में से कुछ ऐसे होंगे जो ये जानकर भी आए होंगे, ये सोच करके विचार लेके, कुछ प्रसाद के लिए आए होंगे, कुछ इस्कॉन बिल्डिंग देखने के लिए आए होंगे, कुछ उत्सुकता से आए होंगे, अनेक अनेक तरीके से लोग आते हैं। और आप देखेंगे कि हर एक का अलग अलग प्रगति भी होता है। कई आप देखते हैं यहाँ पर अलग अलग विद्यार्थी हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कोई तो है वो सेफ्रॉन में है, तो आप तो देख रहे हैं कई वो अभी भी आए हैं, अभी व्हाइट कपड़े में भी हैं, और कई स्टूडेंट हैं हमारे जो कि कंठी पहनते हैं और माला भी लगाते तिलक लगाते हैं और माला करते देखते हैं आप स्टूडेंट्स को। और कई स्टूडेंट होते हैं जिनको उसमें कोई रुचि नहीं होता है। कई स्टूडेंट आते हैं 5 मिनट के बाद चले जाते हैं बाहर, क्योंकि वो कुछ और सुनने आए थे, यहाँ तो कुछ और हो रहा है। वो सोचे थे इस्कॉन मतलब कुछ सीखने को मिले कि कैसे स्टडीज में बढ़िया करके सबसे टॉप कैसे कर देना है और फिर खूब पैसा कैसे मिले। और लेकिन यहाँ तो सिर्फ भगवान भगवान, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये हमारी जगह नहीं है। ऐसे सब लोग अलग अलग चीज़ें सोच के आते हैं और फिर उसके हिसाब से उनकी अलग अलग प्रगति होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम जानने आए हैं कि गुरु कौन। तो गुरु को जानने से पहले, ये डेफिनेशन जानने से पहले गुरु कौन जाना जरूरी है, शिष्य कौन। अगर आप शिष्य ही नहीं हैं प्रॉपर क्वालिफाइड, तो आप गुरु को पहचान ही नहीं सकते आप। इसलिए ये टॉपिक पे जाने से पहले जरूरी है जानना शिष्य कौन, गुरु कौन से पहले जानना शिष्य कौन। इसलिए मैं इस बात कर रहा हूं कि सब आप लोग अपने अंतःकरण में देखें जरा अंदर कि आप प्रॉपर स्टूडेंट हैं। जैसे आप लोग बीई या एमएससी या बीएससी में एडमिशन लिए होंगे, तो एक आपको देखा गया होगा ना कि आप क्वालिफाइड हैं एडमिशन के लिए कि नहीं। तो योग्यता देखी जाती है ना हमेशा शिष्य की, स्टूडेंट की। तो ऐसे ही आध्यात्मिक या भगवान को समझने के विषय में या भगवद्गीता को समझने के विषय में भी सबसे पहले स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन देखी जाती है, स्टूडेंट क्वालिफाइड है कि नहीं। तो क्या है क्वालिफिकेशन स्टूडेंट की? ये क्लास, ये सत्संग किन लोगों के निमित्त है, कौन लोग हैं जो इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे? जो भी आएगा, चाहे वो क्वालिफाइड नहीं भी है, वो जो भी सुनेगा, भले ही वो प्रसाद के लिए आया है, लेकिन यहाँ हरे कृष्ण बोलेगा तो उसको फायदा होगा निश्चित, और प्रसाद से भी फायदा होगा। सो नो प्रॉब्लम, केवल प्रसाद के लिए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा? जो बेस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट होगा वो सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा। तो इसलिए हमको जानना जरूरी है कि क्या क्वालिफिकेशन, जिससे कि हम भी यदि उस क्वालिफिकेशन में पूरी तरह से नहीं है तो प्रयास करके समझ करके हम भी क्वालिफाइड स्टूडेंट बन सकें, जिससे कि हम सबसे अच्छे से प्रगति कर सकें। तो शास्त्र में बताया गया है क्वालिफिकेशन शिष्य के, आधारभूत क्वालिफिकेशन। कौन सा शिष्य है जो ये समझ सकता है? जो भगवद्गीता का स्टूडेंट है उसकी क्वालिफिकेशन। तस्मात गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमः। क्या कहते हैं शास्त्र? तस्मात, देयरफोर, गुरुम प्रपद्ये, गुरु की शरण में जाओ। अगर बीच में है, अगर जिज्ञासु श्रेय उत्तमः, अगर तुम अपना श्रेय परम कल्याण चाहते हो तो तुम गुरु की शरण में जाओ। और यदि परम कल्याण से नीचे कुछ और चाहते हो तो फिर गुरु की जरूरत नहीं है, इन गुरु की आध्यात्मिक। आपको कराटे सीखने हैं तो आपको कराटे गुरु के पास जाना पड़ेगा ना, वो यहां पर थोड़ा कराटे सीखने के लिए, पैसे में वृद्धि करनी है, भौतिक में वृद्धि करनी है तो उसके लिए भौतिक गुरु है, मार्केटिंग गुरु है, करेक्ट। लेकिन यहां हम किस गुरु की बात कर रहे हैं? आध्यात्मिक, जो भगवान की तरफ हमको ले जा सके, जो भगवान को समझा सके हमें। तो उसके लिए बताया गया है क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको जिज्ञासु श्रेय उत्तम, उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, यही क्वालिफिकेशन, सिंपल क्वालिफिकेशन। आप सोच रहे हो पता नहीं क्या बोलेंगे, पीएचडी इन केमिस्ट्री फिजिक्स, जिसको कुछ अद्भुत अनुभूतियां होती हों, ऐसा कुछ सोचते होंगे। नहीं, सिंपल क्वालिफिकेशन है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए जानने की भगवान को, दैट्स ऑल। जिस व्यक्ति के अंदर भगवान को जानने की तीव्र इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, वो व्यक्ति क्वालिफाइड है भगवान को जानने के लिए। सिंपल क्वालिफिकेशन, बट डिफिकल्ट क्वालिफिकेशन, क्योंकि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे। हजारों 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 लोग में से कोई एक है जिसको भगवान को समझने के लिए इच्छा है, करेक्ट? किसी से बोलो पैसा कैसे बनाना है, इसका सेमिनार है और भीड़ लग जाएगा, पूरा जगह नहीं मिलेगा हमको यहां पर। कैसे जॉब कैंपस इंटरव्यू में कैसे पास होना है, इसके लिए आज सेमिनार देने वाले हैं, देखो पूरा भीड़ लग जाएगा। लेकिन बोलो ये भगवान कौन है ये बता रहे हैं, मेरे को घर जाना है, बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। तो ये जिज्ञासा, भगवान को जानने की जिज्ञासा, ये रेयर है, बहुत बहुत रेयर है। क्योंकि भगवान को जानने की जिज्ञासा व्यक्ति में कब होती है, जब वो इस वर्तमान जगत से असंतुष्ट है, तब तो उसको भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा होगी। जिसको बाइक में और कार में और गर्लफ्रेंड में इंटरेस्ट, मजा आ रहा है, वो क्यों भगवान के बारे में जानना चाहेगा? कई बार हम जाते हैं कि भगवद्गीता लीजिए, आई डोंट नीड इट, आई एम सेटिस्फाइड माई लाइफ, इसकी जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो लोग परेशान हैं, उन लोगों के लिए ये सभी जाना भगवान, अरे मैं तो खुश हूं बिना भगवान के, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो सही बात है, जो लोग बिना भगवान के सुखी हैं, जिनको जो भौतिक संसार में सुख अनुभव कर रहे हैं, वो क्वालिफाई नहीं है भगवान को जानने के लिए। तो श्रेय, तो दो प्रकार की चीज होती है, एक होती है प्रेयस और एक होता है श्रेयस। प्रेयस मतलब जो हमारे इमीडिएट बेनिफिट की चीज होती है उसे हम प्रेयस कहते हैं, और जो हमारे अल्टीमेट बेनिफिट की चीज होती है उसे हम श्रेयस कहते हैं। जैसे जब हम छोटे बच्चे थे, तो कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको स्कूल जाना पसंद होगा? जनरली कोई ऑकवर्ड हो, कोई बॉर्न आइंस्टाइन हो, दूसरी बात है, बट आई थिंक जनरली जो ज्यादा ग्रेट होते हैं वो स्कूल जाते ही नहीं, वैसे घर में बैठ के वो लोग ग्रेट बनते हैं। तो एनीवे, तो हमको खेलना अच्छा लगता है, तो खेलने से हमको तुरंत आनंद आता है। लेकिन हमारे माँ बाप हमको जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं कि बेटे अभी तो तुमको आनंद आ रहा है, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे और एजुकेशन नहीं लोगे, तो कोई डिग्री नहीं होगी, तो फिर तुम पछताओगे, फिर कठिनाई में आओगे, फिर तुम पछताओगे कि मैंने क्यों नहीं पढ़ाई की। तो यानी वो क्या कह रहे हैं हमको कि प्रेयस मत देखो, श्रेयस देखो, इमीडिएट बेनिफिट मत देखो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखो। कि तुम पढ़ाई करने जाओ, भले ही वो तुमको अरुचिकर लग रहा हो, लेकिन आगे चल करके वो तुम्हारे काम में आएगा। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं श्रेयस और प्रेयस में, इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म। लेकिन साधारणतया लॉन्ग टर्म मीन्स लोग बनाते हैं योजनाएं, दीर्घ सूत्री योजनाएं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मैं अहमदाबाद में गया IIM इंस्टीट्यूट में के बाहर से निकल रहा था, तो उसमें लिखा था वो 20 ईयर्स का प्लानिंग कर रहे हैं, 20 ईयर्स के बाद हम क्या होगा, क्योंकि मैनेजमेंट IIM है इसलिए 20 ईयर्स की बातें कर रहे हैं। ऐसे हर एक व्यक्ति आई करता है, जो जितना आई करता है वो उतना बुद्धिमान होता है। तो मैक्सिमम हम सब लोग प्लानिंग करते हैं कहाँ तक की, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति प्लानिंग करता है लास्ट में लास्ट कहाँ तक की प्लानिंग करता है अपने जीवन में, जब तक ये शरीर है तब तक। रिटायरमेंट के बाद मेरा इतना पैसा यहाँ बैंक में होगा, मेरा इतने घर होंगे, ये सब प्लानिंग करता है ना, मरने तक करता है बस। मरने के बाद एक प्लानिंग करता है कोई कि मैं कहाँ जाऊँगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूँ, क्या होगा मेरा उसके बाद, नहीं करता ना। तो श्रेय मतलब इटर्नल प्लानिंग, परमानेंट प्लानिंग। क्योंकि हम में से हर कोई तो ये अनुभव कर रहा है कि मैं टेम्पररी नहीं हूं, मैं क्षणिक नहीं हूं, क्योंकि मुझे कोई भी क्षणिक चीज अच्छी नहीं लगती। मेरा कोई फ्रेंड है तो मैं चाहूंगा कि मेरा हमेशा वो फ्रेंड बना रहे, मेरे पेरेंट्स है तो मैं चाहूंगा कि हमेशा मेरे वो पेरेंट्स बने रहें, कोई भी मैं आनंद लेना चाहूंगा किसी भी चीज से तो मैं चाहूंगा कि हमेशा मैं वो आनंद देता रहूं, करेक्ट? हम में से कोई भी नहीं चाहता कि क्षणिक चीज हमारे पास, मार्केट में जाएंगे ड्यूरेबल है कि नहीं, वहां ये तो चलती रहेगी, खत्म ही नहीं होगी, कोई भी चीज चलती नहीं है। लेकिन बोलते हम हमको हर चीज कैसी चाहिए, नित्य चाहिए। ये क्या दिखाता है कि अंतःकरण में हम सभी लोग अनुभव कर रहे हैं कि हम नित्य हैं, तभी तो हमको नित्य चीज चाहिए, अनित्य आद्यंतवंत कौन ते अनतेषु रमते बुधः, भगवद्गीता बताया है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, जो लोग जानते हैं कि वो नित्य हैं और उनको नित्य चीज चाहिए, वो लोग टेम्पररी चीजों में नहीं पड़ते हैं, टेम्पररी चीजों के पीछे नहीं भागते हैं, ये लक्षण है बुद्धिमान का। एक जानवर होगा वो बिल्कुल इंपल्स पे काम करता है, बस अभी इस समय उसे क्या चाहिए वो कर देगा, उसके उसका परिणाम क्या होगा एक दिन बाद दो दिन बाद उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसकी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो उसका आय का सोच सके। करेक्ट, अभी मेरे को भूख लगा है बस खा लो, अभी संभोग का इच्छा हुआ है संभोग कर लो, उसका परिणाम क्या होगा ये सब नहीं सोचेगा, मनुष्य आय के सोचता है। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होता है तो उसी अनुसार हम अंततः इस स्तर पर आते हैं कि हम समझते हैं कि मैं तो नित्य हूं, तो मेरा नित्य धर्म क्या है, मेरा नित्य संबंध किसके साथ है, मेरा नित्य जीवन क्या है, वो नित्य सुख मुझे कहां मिलेगा, इसकी मैं तलाश करूं। ये मनुष्य जीवन के अंदर जो सबसे ज्यादा विकसित व्यक्ति है उसका लक्षण है ये सोचना, उसे कहते हैं जिज्ञासु श्रेय उत्तम, जो अपनी श्रेय के लिए प्रयास करना चाह रहा है। तो विद्यानगर में सब लोग आते हैं एमएससी पीएचडी करने के लिए, वो श्रेयस है कि प्रेयस है, प्रेयस है, वो थोड़े समय के लिए है, मैक्सिमम जब तक आपका ये शरीर है तब तक के लिए वो काम आने वाला है। लेकिन ये कक्षा, ये भगवद गीता उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इतने विकसित हो चुके हैं, जो इतने बुद्धिमान हो चुके हैं, इतने बुद्धिमान हैं अपने चेतना के अंदर कि वो समझ रहे हैं कि ये पीएचडी और ये इंजीनियरिंग मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, ये बॉडी मेंटेनेंस के लिए है दैट्स ओके, बट दैट इज नॉट द एसेंस ऑफ माई लाइफ बिकॉज दिस इज टेम्पररी, सो दिस कैनॉट बी द एसेंस ऑफ माई लाइफ, सो आई मस्ट सर्च फॉर द एसेंस फॉर द इटर्नल। तो जो ऐसे हैं, जो श्रेयस, जो भौतिक जगत में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भौतिक जगत में है तब तक शरीर है, शरीर को चलाने के लिए कुछ करना है दैट्स ओके, लेकिन वो क्लियरली ये समझ रहे हैं कि यही जीवन नहीं है, दे ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट। ज्यादातर लोग तो दे लिव टू ईट, उनके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं है, सुबह उठते हैं ब्रश करके खाओ देखो यानी इंद्रिय भोग, और रात तक सोते समय तक यही करो, फिर सुबह उठ के फिर वही चीज शुरू करो, पूरा जीवन ऐसे करते रहते हैं। करेक्ट, लेकिन कुछ लोग हैं जो आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर भी सोचते हैं कि ये क्या जीवन चल रहा है, सुबह उठो बस वही खाओ सो शादी करो बच्चे पैदा करो सिर के ऊपर हेडेक लो और फिर बूढ़ा हो जाओ बीमार हो जाओ मर जाओ, और फिर कहते हैं दोबारा ऐसे आओ फिर दोबारा ये करो फिर मर जाओ। तो क्या मैं पागल हूं क्या, मैं ऐसे ही चलता रहूंगा चक्कर में, ऐसे बिना जाने क्यों चक्कर में हूं किस लिए हूं। सो सम इंटेलिजेंट पीपल थिंक, और शास्त्र के अनुसार जो ऐसा सोचते हैं ना वही उनको मनुष्य कहा गया, जो ऐसा नहीं सोचते उनको मनुष्य भी नहीं कहा गया, सिविलाइज नहीं है वो लोग। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतम पशु भृणानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भृणानाम, जिनमें यह भी जिज्ञासा नहीं है उनको बताया गया है पशु के समान है वो। तो शिष्य की क्वालिफिकेशन है वो आदमी होना चाहिए, सिंपल क्वालिफिकेशन, ये शुड बी ह्यूमन बीइंग अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है वो क्वालिफाइड है इस ज्ञान को समझने के। तो अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि कहां तक आप लोग क्वालिफाइड हैं। तो हम यहां बात कर रहे हैं उनके लिए जो क्वालिफाइड हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा है, तो तद्विद्धि उनके लिए मार्ग बताया गया है अभी कि ठीक है। तो अभी आप शिष्य हो, आप जानना चाहते हो परम सत्य के विषय में, तो क्या तरीका है परम सत्य को जानने का, कि उसको तत् तत् मीन्स एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसको जानने के लिए आपको ऐसे एक व्यक्ति की शरण में जाने की जरूरत है जो तत्वदर्शी हो, जिसने खुद उस तत्व का को समझा हो पूरी तरह यथारूप समझा हो देखा हो अंडरस्टैंड किया हो, ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। करेक्ट, तो विशेष रूप से आजकल के आधुनिक माहौल में यह विचारधारा बहुत प्रचलित है, बी ऑन योर ओन, किसी पे डिपेंड मत हो, किसी के व्यूज को एब्सोल्यूट मत मानो, जो आपको अच्छा लगता है पसंद आता है वही बेस्ट है, और हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी अपना विचार रखने के लिए और जो उसको अच्छा लगे उसको स्वीकार करने के लिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ हो, ट्रुथ रिलेटिव है और हर व्यक्ति के लिए ट्रुथ उसकी अलग अलग हो सकती है। जो व्यक्ति को जो समझ में आता है उसके लिए वही ट्रुथ, ऐसा विचार एक प्रस्तुत किया जाता है। और ये हम सब इससे प्रभावित हैं। स्कूल में हम कॉलेज में जाते हैं तो डिबेट होती है, डिबेट। ओके सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? वेल आई थिंक दैट दिस इज लाइक दिस। ओके, दैट्स योर ओपिनियन, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, प्लीज सिट डाउन। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक लाइक दिस दिस दिस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सिट डाउन। तो सब लोग अपने अपना विचार रखेंगे और सबकी बात, उसकी भी सही है, उसकी भी सही है, उसकी भी सही है, सबकी अब बात अपनी अपनी जगह सही है, नो कंक्लूजन। कोई ऐसा नहीं कि भाई ये सही है और भाई गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा बोलेंगे तो बोले कंजर्वेटिव एटीट्यूड। कंजर्वेटिव क्या है? डॉगमेटिक एटीट्यूड, ये सही है ये गलत है। अरे क्या भाई, सब स्वतंत्र हैं इस संसार में सोचने के लिए, हम सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, पर यमराज के डंडे खाने के लिए यमराज स्वतंत्र है खिलाने के लिए हमको, वो हम स्वतंत्र नहीं है कि हम बोले यमराज आप चाहते हैं डंडे मारना, लेकिन मेरी इच्छा नहीं डंडे खाने की, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं बुढ़ाऊंगा, वहां स्वतंत्रता है हमको नहीं है। तो फिर आपको सोचने की स्वतंत्रता कैसे है कि सही सच्चाई ये है और गलती है? तो ये आधुनिकीकरण के द्वारा उत्पन्न एक भ्रांत धारणा है कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, जस्ट आपको जो दिखता है। एक्चुअली अगर आप इसके बेसिस में जाएंगे तो बॉयल डाउन करेंगे इस फिलॉसफी को तो आएगा नथिंग एग्जिस्ट्स, कुछ है ही नहीं, इट्स ओनली अवर इल्यूजन दैट थिंग्स एग्जिस्ट, इट्स अवर इल्यूजन दैट वी एग्जिस्ट, बिकॉज मे बी एवरीथिंग इज जस्ट, क्योंकि सबकी ओपिनियन अलग अलग है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज है ही नहीं, सब अपने अपने मानने की बात है, एवरीथिंग इज जस्ट इल्यूजन, एंड स्टिल दे आर ट्राइंग टू एंजॉय दिस इल्यूजन, दैट इज अ ग्रेट इल्यूजन। कहते हैं सब इल्यूजन है और फिर भी इस इल्यूजन को एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, दैट शोज एटलीस्ट दे आर इन इल्यूजन, कम से कम वो लोग तो भ्रम में आए, क्योंकि इल्यूजन को एंजॉय करना क्या है, इल्यूजन है ना, दैट एंजॉयमेंट विल बी इल्यूजरी, इफ यू आर ट्राइंग टू एंजॉय एन इल्यूजन दैट एंजॉयमेंट विल बी इल्यूजरी, करेक्ट। तो जो पागल होते हैं वो लोग ऐसी बात करते हैं, नथिंग एग्जिस्ट, नथिंग एग्जिस्ट, सो दिस इज स्टेटमेंट विच यू आर सेइंग दैट नथिंग एग्जिस्ट, दिस ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। एवरीथिंग इज वॉयड, देन वॉट वी आर सेइंग, एवरीथिंग इल्यूजन। इल्यूजन का कोई ना कोई बेसिस होता है, इल्यूजन रियलिटी है तब इल्यूजन है, अगर रियलिटी नहीं तो इल्यूजन कैसे बोलेंगे किसी चीज को? अगर आपको कोई चीज सांप दिख रही है और वो रस्सी है तो आप बोलेंगे आपको भ्रम हो गया, ये सांप नहीं है रस्सी है। तो सांप होने का भ्रम कैसे हुआ? कि सांप एग्जिस्टेंस में है तभी तो सांप होने का भ्रम होगा ना, अगर सांप एग्जिस्टेंस में है नहीं तो सांप होने का भ्रम कैसे हो जाएगा? सो इल्यूजन कैनॉट बी देयर विदाउट ए रियल थिंग प्रेजेंट। तो एनीवे हम थोड़ा अलग चले गए। तो कहने के तात्पर यह है कि यतो मत ततो पद बात गलत है, कि बस हम यहां सुनने के लिए आए हैं स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये उनकी कृष्ण की ओपिनियन है, हमको अच्छा लगेगा अपनाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं अपनाएंगे, नो। बता रहे हैं कि आप जो तत्वविद हैं, जिन्होंने तत्व को जाना है उन्हीं से आप जानकारी प्राप्त करो, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अपना एक व्यू बनाओ, सबको देखो, लोग क्या कह रहे हैं, इस संसार को देखो, अल्टीमेटली आप अपना एक व्यू बनाओ कि सच्चाई क्या है, इसलिए आप जाओ मेरे अनुसार सच्चाई है, मेरे अनुसार भगवान ये है, मेरे अनुसार भगवान ये है, मेरे अनुसार ये है। अब आप कोई आदमी बोले कि इंडिया की कैपिटल क्या है, मेरे अनुसार विद्यानगर कैपिटल है, क्योंकि मैं विद्यानगर में रहता हूं, इसलिए मेरे अनुसार विद्यानगर कैपिटल है। तो उस आदमी को क्या कहेंगे आप? आपके अनुसार विद्यानगर कैपिटल हो सकती है, पर विद्यानगर कैपिटल नहीं है, न्यू दिल्ली कैपिटल है। तो उसी प्रकार से परम सत्य को जानने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना ही होगा जो तत्वतः उसको जानता है, परफेक्टली जानता है। अगर हम ये मन के अंदर सोच के रखेंगे कि अल्टीमेटली मैं भगवान को खुद अपने एंडेवर से, जैसा मेरे को इस छोटी सी बुद्धि से, इन सीमित इंद्रियों से मैं समझ सकता हूं, केवल वही मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, और निश्चित रूप से मैं किसी भी एक ऐसी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करता हूं कि कोई अथॉरिटी है जो सत्य को जानती है, जिससे मेरे को सत्य को लेना है, ऐसी कोई चीज नहीं है। अल्टीमेटली जगत में कोई सच्चे को नहीं जानता है, सच्चाई को नहीं जानता है, सबको डिस्कवरी करनी है। आप देखिए ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत डीप में घुसा हुआ है, हमारी रग रग में घुसा हुआ है, क्योंकि आप लोग कितने साल पढ़े हुए हैं अभी तक, 12 प्लस 13 14 15, और वो अभी प्री के जी से शुरू आता है ना, 2-3 साल वो खराब होते हैं, तो 12 13 14 15 16 17 18 साल का आपको ट्रेनिंग है कि एवरीथिंग नीड टू बी डिस्कवर्ड। हमारा पूरा एजुकेशन सेटअप किस चीज पे टिका है कि हम आदि मानव थे, हम तो बंदर थे, हमको भी पता ही था, आंख खुली देखा अरे कुछ है, तो फिर सोचना शुरू किया क्या है, और ऐसे कर करके धीरे धीरे हम लोग प्रगति कर रहे हैं। आज तक अभी पता लगाया कि हम जो है ये आदमी हैं, और पहले हम आदि मानव थे, और ये अर्थ है, और ऐसे ऐसे कोई चंद्र जैसी जगह भी है, अभी हम लोग वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां क्या है, और फिर उसके आगे जाएंगे मार्स, वहां तो पत्थर ही पत्थर मिले, अभी आगे जाएंगे, अभी मार्स पे जाएंगे, वहां शायद कुछ हो, फिर आगे जाएंगे। ऐसे करके हर आदमी को खोजना है कि संसार क्या है, ये एक सोच है जो हमारे सबको दिमाग में बैठाई गई है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल ऐसा ही है, बचपन में गए आपको सबको सिखाया गया नहीं, हम पहले बंदर थे और बंदर से पहले केमिकल थे, यानी हम कुछ भी नहीं थे, धीरे धीरे बने, किसी को नहीं पता था संसार क्या है, सब धीरे धीरे लोगों ने परीक्षण करना शुरू किया, तब न्यूटन ने एक दिन जब सेब गिरते हुए देखा तब उसको पता लगा ओहो ये तो ग्रेविटेशन फोर्स है, इससे सब चल रहा है। तो ऐसे सब डिस्कवरी करना है हमको, इसीलिए इसी का आप इसको हाइपर इसको आगे ले जाएंगे इसी वाद को, तो यानी कि कोई भी आदमी परम सत्य को नहीं जानता है। एक जो प्रोफेसर है भगवद गीता का, तो उसने ज्यादा भगवद गीता का स्टडी किया है, इसलिए वो मेरे से थोड़ा आगे जा चुका है, इसलिए मैं उसे सुन सकता हूं, बट अल्टीमेटली आई हैव टू अंडरस्टैंड ऑन माई ओन, आई कैन हियर फ्रॉम डिफरेंट पीपल, और मेरे से ज्यादा जानने वाले हो सकते हैं, बट ऐसा कोई नहीं है कि कोई परम सत्य खुद अपने को बताता है, डायरेक्ट किसी का परम सत्य से जानकारी है, ऐसा कोई कुछ नहीं है, सब लोग नीचे से ही ऊपर जा रहे हैं ज्ञान में। लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम ये प्रोपोजिशन लेके चलें कि अल्टीमेटली सब लोग नीचे से ऊपर ही जा रहे हैं, तो इसमें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा फिर हमारे लिए कभी भी परम सत्य को जानना, अगर हम ये प्रोपोजिशन लेके चलें कि अल्टीमेटली वी हैव टू जस्ट कीप ऑन डिस्कवरिंग डिस्कवरिंग डिस्कवरिंग, एंड जस्ट बाय डिस्कवरिंग वी विल रीच द अल्टीमेट ट्रूथ, दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। क्यों? क्योंकि जो आपके डिस्कवरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनसे आप डिस्कवर कर रहे हैं, जिनसे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्या हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स, क्या इंप्लॉय आपके, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप अपने इंद्रियों को, बुद्धि को, मन को प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ज्ञान लेने के लिए, करेक्ट? और ये आपके इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनकी एक लिमिट है, उनकी एक सीमितताएं हैं, वो कंडीशनड हैं, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनकी फंक्शनिंग, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, और आप ये भी नहीं जानते कितने फैक्टर्स के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स। तो अभी उसके लिए कुछ हम कहते हैं ना कि ये फॉर्मूले के लिए ये कंडीशंस हैं, इनके अंतर्गत ये फॉर्मूला जो है वो होता है, एप्लीकेबल होता है, दिस कंडीशन शुड बी मेट। तो ग्रेविटेशन फोर्स है तो देयर शुड बी टू मासेस जिसके बीच में ग्रेविटेशन होगा, बहुत सारी कंडीशंस, अलग अलग फोर्स के लिए अलग कंडीशंस हैं। अगर उन फोर्सेस में चेंज आ जाए, क्योंकि फोर्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिफरेंट वेव्स इंटरेक्ट करती हैं, तो अगर वो हो जाएंगी तो फिर लॉज चेंज, लॉज के ऊपर फर्क पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी क्रिएट अ पर्टिकुलर, वी गिव अ सेट ऑफ सिचुएशंस, अंडर दीज आइडियल सिचुएशंस दिस इज इक्वल टू दिस, इफ आइडियल सिचुएशंस आर नॉट देयर देन द वैल्यू विल चेंज, करेक्ट? तो यानी कि जो भी हम लॉ बना रहे हैं, जो भी हम लॉ निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कंडीशन है, अंडर सर्टेन कंडीशंस ही वैसा है। लेकिन क्या हम सब कंडीशंस को जानते हैं? आज आप कुछ फोर्सेस को जानते हैं, पर ऐसे और भी बहुत सारी फोर्सेस होंगी जो आप आज से 10 साल बाद पता लगाएंगे, लेकिन वो फोर्सेस भी तो एक्ट कर रही हैं जो आपके आज के लॉज हैं। दैट मीन्स आपके आज के लॉज परफेक्ट नहीं है, वो और कुछ फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है जो आप नहीं जानते हैं, इसीलिए हमारे लॉज चेंज होते रहते हैं। Heisenberg's uncertainty principle. Uncertainty is the principle now. So they have come to the right conclusion. Uncertainty is the principle. Nothing is certain. Because you don't know. Because it's a very complicated thing. Whole universe, very, very complicated thing. So many forces, so many forces. इसलिए ये जो तरीका है जिसमें हम केवल अपने ही बुद्धि इंद्रियों से सोच रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट को जान पाएंगे, सब कुछ को परफेक्टली जान पाएंगे, ये सपना कभी साकार नहीं होने वाला. बिकॉज योर वेरी इंस्ट्रूमेंट्स आर इम्परफेक्ट. इसलिए सबसे पहले तो अगर इस विषय में आगे बढ़ना है तो हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा, द ओनली वे, केवल एकमात्र एक ही तरीका है यदि हम परम सत्य को परफेक्टली जान सकते हैं, परफेक्टली, पूरी तरीके से, कि परम सत्य खुद हमें, अगर ऐसा कोई तरीका हो, ऐसे पॉसिबिलिटी यदि कोई हो कि परम सत्य स्वयं हमें अपने बारे में बता सकें, तो ही हम परम सत्य को यथारूप परफेक्टली जान पाएंगे, अदरवाइज नहीं जान सकते कभी भी. और कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति तो इम्परफेक्ट है. जैसे हमने आपको उस दिन बताया था, जो लोग पहले आए थे, कूपमंडू कन्याए, हमने एग्जाम्पल दिया था, और भी एग्जाम्पल है. अभी चीटी चल रही है यहां पर, तो वो चीटी जो है उसकी बुद्धि चीटी जैसी है, उसकी इंद्रियां चीटी जैसी हैं, तो वो चीटी कभी नहीं समझ पाएगी कि मैं जो चल रही हूं वो एक प्रभुपाद आश्रम है. प्रभुपाद आश्रम में एक लेक्चर हॉल है ये, और यहां पर मैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर में चल रही हूं, और ये प्रभुपाद आश्रम जो है ये एक विद्यानगर इस्कॉन मंदिर का एक अंग है. चीटी की इंद्रियां सक्षम नहीं है ये समझने के लिए कि विद्यानगर का मतलब क्या है. विद्यानगर छोड़े कमरे का मतलब क्या, उसको नहीं पता. करेक्ट, उसकी क्षमता उतनी ही है. अगर चीटी को इवॉल्व होने दिया जाए, चीटी वो सब जानकारी प्राप्त कर रही है इस हॉल में, हर रोज 10 चक्कर काटती है, और पूरा जीवन चक्कर काटती रहे तो भी वो कहीं पता नहीं लगा पाएगी ये मैं चक्कर कहाँ काट रही हूं, क्योंकि उसकी एक लिमिट है. चीटी चीटी जैसी रहती है, चीटी कभी हमारे जैसी नहीं आ सकती. और आप सोचें कि हम लोग इवॉल्व हो जाएंगे, जैसे हम बंदर थे, अभी बंदर से आदमी बन गए, चीटी भी इवॉल्व होते होते आदमी बन जाएंगे. पहली बात तो वो जो पूरी इवोल्यूशन थ्योरी है, सेल्फ इज ए बोगस थिंग. एनीवे, इवॉल्व होंगे भी, बट एट एनी पॉइंट यू विल रीच, वेयर इज द गारंटी दैट यू हैव रीच द क्लाइमैक्स ऑफ इवोल्यूशन. करेक्ट, चीटी सोच रही है कि आई एम द मोस्ट इवॉल्व्ड, व्हाई नॉट. करेक्ट, चीटी सोच सकती है आई एम द सुप्रीम, आई एम, मेरे से ऊपर तो कुछ जान नहीं सकता. यूनिवर्स इज एज आई परसीव. हर हफ्ते सोच रहा है, आदमी सोच रहा है कि वी आर द मोस्ट इवॉल्व्ड बीइंग्स, एंड सो व्हाट वी नो एज यूनिवर्स इज यूनिवर्स. तो चीटी भी ये सोच रही है, चीटी सोच रही है वो जो उसका बिल है और उसको बाहर निकलना है, खाना लेके अंदर आना है, बस ये उसके लिए, ये यूनिवर्स का, ये उसके लिए परम सत्य है. तो इसलिए हर जो भी योनि में है, इट कैन जस्ट थिंक. तो इसलिए ये जो मार्ग है जिसमें व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने बलबूते पर परम सत्य को जान लूंगा, ये डेफिनेटली फेलियर का मार्ग है. ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं. जब तक आपके अंदर ये आशा है कि मैं, मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, मुझे किसी एक अथॉरिटी को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा परम सत्य कोई बताए, ऐसा नहीं है, मैं खुद जानूंगा अपने आप, जब तक आपके अंदर ये भावना है तब तक आप डिसक्वालिफाइड हैं परम सत्य को समझने के लिए. तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे चलते हैं कि परम सत्य स्वयं, जो भी बनाने वाला है, क्रिएटर है, वो यदि खुद हमें बताते हैं कि ये मैं हूं और इसलिए मैंने तुम्हें बनाया है, ये मेरा तुम्हारा संबंध है, तभी हम उनको परफेक्टली जान सकते हैं. इन्फ्लुएंस आप ले सकते हैं, कुछ हद तक जान सकते हैं, कुछ हद तक, कि ये सब संसार देख रहे हैं तो कोई ना कोई क्रिएटर होगा, ये आप जान सकते हैं, बट इन डिटेल एग्जैक्टली व्हाट इज द पर्पस, व्हाई एवरीथिंग इज बीइंग क्रिएटेड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अस एंड द गॉड, दिस थिंग डिटेल्स यू कैनॉट नो बाय इन्फ्लुएंस. तो इसलिए कहा गया है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। या तो आप परम सत्य से जानो या ऐसे व्यक्ति से जानो जिसने परम सत्य से जाना हो, वन एंड द सेम थिंग। या तो परम सत्य से जानो डायरेक्ट, जैसे अर्जुन, यहां पर अर्जुन ज्ञान किससे ले रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से ले रहे हैं जो खुद परम सत्य हैं। लेकिन हम लोग अर्जुन जैसे नहीं है कि हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान ले सके, इसलिए हमें किसकी आवश्यकता है कि जो परम सत्य से स्वयं जिसने ज्ञान लिया हो उससे हम ज्ञान ले सकते हैं, नो डिफरेंस। यानी कि परम सत्य को जानने के लिए जरूरी है, आवश्यक है एक गुरु, यानी एक व्यक्ति जिसने परम सत्य से ज्ञान लिया हो, और उसी डेफिनेशन के अनुसार वो व्यक्ति परम सत्य से गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ा हुआ हो। वो व्यक्ति हो सकता है डायरेक्ट भगवान से उसने नहीं ज्ञान लिया हो, लेकिन अल्टीमेटली वो ज्ञान परम सत्य से प्रारंभ होना चाहिए, भगवान से प्रारंभ होना चाहिए, और अनब्रोकन गुरु शिष्य परंपरा में, बिना टूटी हुई श्रृंखला में गुरु शिष्यों की, वो ज्ञान आए और हम तक पहुंचे, तभी दिस इज द ओनली प्रोसेस। ये केवल एकमात्र यही तरीका है परम सत्य को हम लोग यथारूप जान सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। तो फिर अभी प्रश्न ये उठता है, ठीक है, तो फिर जिज्ञासा हमारे अंदर है, मान के चलते हैं कि हम लोग अभी इच्छुक हैं जानने के लिए कि भगवान क्या है। एक और बात इसमें इच्छा में क्लियर कर देना चाहता हूं कि भगवान को जानने की इच्छा उसकी भी एक क्वालिटी है। तो साइंटिस्ट लोग भी जानने का प्रयास कर रहे हैं परम सत्य को, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है, बहुत सारी डिस्कवरीज कर रहे हैं, बहुत सारी थ्योरीज निकाल रहे हैं, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरीज एंड सो मेनी थिंग्स, स्ट्रिंग थ्योरी इत्यादि। तो क्या वो साइंटिस्ट लोग क्या क्वालिफाइड हैं भगवान को समझने के लिए? क्यों, वो तो बहुत उत्सुक हैं, इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी अपनी शक्ति लगा रहे हैं, दिन रात सोते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, उसके पीछे पड़े हैं पूरा परम सत्य वो खोजने के लिए कि ओरिजिन क्या है, तो वो लोग क्यों क्वालिफाइड नहीं है? हमने जो डेफिनेशन दिया तो उसके अनुसार तो वो लोग इच्छुक हैं, उत्सुक हैं जानने के लिए भगवान को। एनीबडी नोज द आंसर, क्या वो क्वालिफाइड हैं या नहीं है? अगर क्वालिफाइड हैं तो फिर वो इतने सारे साइंटिस्ट, इतने बुद्धिमान लोग, इतना अच्छा जानकारी उनको है, इतना सब मिरेकल काम करते रहते हैं, लेकिन हम देख प्रैक्टिकली देखते हैं कि उनको वो भगवान के ऊपर उनको श्रद्धा भी नहीं होती है, जानने की बात छोड़ो वो कुछ भी नहीं जान पाते हैं भगवान के बारे में, पूरी तरह से कंफ्यूज हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। हर एक साइंटिस्ट की अपनी अलग अलग थ्योरी है और वो सब थ्योरी आपस में एक दूसरे को काट रही है। तो अगर वो लोग क्वालिफाइड हैं तो क्यों परम सत्य को नहीं जान पा रहे हैं? फिर ये प्रश्न उठता है, उनके अंदर जिज्ञासा है लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि वो परम सत्य को नहीं जान पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं पूरी तरीके से। कोई भी, स्टीफन हॉकिंस ऑल्सो बिविल्डर्ड। तो जिज्ञासाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है शुद्ध जिज्ञासा जानने के लिए और एक होती है नकारात्मक जिज्ञासा नहीं जानने के लिए। तो एक आदमी जानने का प्रयास कर रहा है भगवान को कि मुझे जानना है भगवान कौन है, क्योंकि भगवान मतलब महान, महानतम, और मैं बहुत छोटा हूं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पिता कौन है, ये महान व्यक्ति कौन है जिसने मुझे बनाया, जिसने सबको बनाया है, जिससे मैं उसकी सेवा कर सकूं, मैं उसकी शरण में जाना चाहता हूं। क्योंकि जब भी कोई महान व्यक्ति और छोटा व्यक्ति मिलता है तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति की सेवा करता है। आप कभी किसी प्रोफेसर से मिलते हैं, किसी भी लर्नेड आदमी से मिलते हैं, तुरंत आपका सिर, जब आप जानते हैं अरे इसने इतना ज्ञान है इसको, आपका सिर झुकता है ना, सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कैन आई सर्व यू, ये स्वाभाविक है। तो ऐसी जिज्ञासा जो है जिसमें हम भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं उनकी शरण में जाने के लिए, उनकी शरणागति लेने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, वो है योग्यता। और जो भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं इस दृष्टिकोण से कि हमें ये प्रूव कर देना है कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, हम सब भगवान है। तो वो रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, पर किस लिए? ये सब जो लोग सुपर स्टिशन करते हैं कि कोई भगवान थे उन्होंने बनाया, आई नो फॉर श्योर कि ये कोई भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, ये सब अपने आप आया है। ऐसा नहीं कि हमें किसी की शरण लेनी है, किसी की सेवा कर नौकरी करनी है, हम सब लोग अपने आप स्वतंत्र हैं। यहां बस एक शक्ति है, अपने आप चल रहा है सब ऑटोमेटिक, सब एक शक्ति है बस। क्योंकि शक्ति मतलब किसी को शरणागति होने का चांस ही नहीं है। अगर किसी आप आदमी को स्वीकार करेंगे नियंता, तो मतलब आपको सेवा करनी पड़ेगी। तो वो हृदय में संजोए बैठे हैं ये इच्छा कि मुझे किसी की सेवा नहीं करनी है, मुझे बॉस बनना है, मुझे एंजॉय करना है। इसलिए ये सब लोग जो कह रहे हैं कि भगवान है, ये मेरे एंजॉयमेंट में एक अवरोध है, क्योंकि फिर मुझे उसकी बात सुननी पड़ेगी कि ये करो ये मत करो, ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन मैं तो फ्री रहना चाहता हूं, मैं तो एंजॉय करना चाहता हूं, इसलिए मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऐसी कोई चीज नहीं है। या शास्त्र के अनुसार भी इत्यादि से भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि हम ही भगवान हैं, हम सब वही शक्ति है, परम शक्ति है, और हम वो सब परम शक्ति बन सकते हैं। यानी एटीट्यूड इज द सेम, वी डोंट वॉन्ट टू सर्व गॉड, आइदर वी वॉन्ट टू से देर इज नो गॉड, और वी वॉन्ट टू से दैट गॉड वॉज देयर बट ही इज नॉट नो मोर देयर, इज ऑलरेडी डेड नाउ, ओल्ड एज हो गई, मर गए, बना करके संसार बनाया फिर चले गए। और गॉड इज नॉट ए पर्सन, ही इज जस्ट इम्पर्सनल, ही इज जस्ट एनर्जी, एंड वी विल ऑल मर्ज इन दैट एनर्जी, एंड सो वी विल ऑल्सो बिकम लाइक हिम, सेम थिंग, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सर्विस। ये सभी नास्तिकवाद है, भगवान की सत्ता को स्वीकार ना करने वाले वाद है। भगवान की शरणगति में जो नहीं जाना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो सब लोग इस प्रकार की इच्छाएं करते हैं, इसलिए वो सब डिस्क्वालिफाइड है भगवान को समझने के लिए। क्लियर? वो लोग योग्य नहीं। इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोग भले ही शास्त्रों में से, कई बार हमको कंफ्यूजन होता है, ये संस्था वाले बोलते हैं ये कृष्ण भगवान है, ये लोग बोलते हैं निराकार है, सब लोग ही वैदिक शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, इनका एक ही बुक पढ़ते हैं, भगवद गीता ही पढ़ते हैं, उसमें से भी ये लोग कुछ ये बोलता है, ये बोलता है, ये बोलता है, कैसे ये सब होता है? तो कई लोग ये निष्कर्ष पे निकलते हैं, इसलिए भगवदगीता एब्सोल्यूट, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, भगवदगीता को भी आप जैसा मानना चाहो वैसा मान लो। तो ये जो अलग अलग वाद है इसलिए निकलते हैं क्योंकि योग्यता नहीं है लोगों की। तो जो भगवान को उनकी सेवा करने के लिए जानना चाह रहे हैं, वही शास्त्रों को, वही भगवान को यथारूप समझ पाएंगे। दिस शुड बी क्लियर। फिर जैसा हमने बताया, तो ऐसे व्यक्ति के लिए को जाना जरूरी है कि उसे परम सत्य के से जो गुरु शिष्य परंपरा में व्यक्ति ने ज्ञान लिया है, उसकी शरण में उसको जाना चाहिए। ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, और क्या करना चाहिए फिर ऐसे व्यक्ति को खोज लेने के बाद? पहले उस व्यक्ति की खोज करनी चाहिए, हम बताएंगे कैसे खोज करनी चाहिए, उसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए, और खोजने के बाद फिर यहां जो बताया है प्रणिपात है, उसकी शरण लेनी चाहिए। यू शुड सरेंडर योर सेल्फ, सरेंडर प्रति प्रणिपात है ना, आज से मैं आपकी शरण में हूं। शिष्य, शिष्य का मतलब समझते हैं, शिष्य शस धातु से आया है, संस्कृत वर्ड है शस, शस मीन्स शासन, शासन शस्त्र शासन, ये सब एक ही धातु से आए, एक ही शब्द से मिलते जुलते हैं सब। शासन मतलब आदेश का पालन करना, डिसिप्लिन। तो जब हम कहते हैं शरणागति, शिष्यता, शिष्य बनना, यानी कि हम एक्सेप्ट करते हैं अथॉरिटी को कि ही नोज एंड आई डोंट नो, सो आई शुड हियर फ्रॉम हिम, आई शुड रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही नोज आई डोंट नो, इसे कहते हैं शिष्य बनना। ऐसा नहीं कि शिष्य जो है वो, मैं शिष्य हूं मेरे गुरुजी का, गुरुजी आपका क्या सोचना है इस बारे में, मेरे नहीं, मैंने सोचना, आप मेरी ये सोच नहीं है। यानी चैलेंजिंग स्पिरिट, तो इसका मतलब शिष्य ही नहीं, उस इंक्वायरी से कोई फायदा नहीं होगा, गुरु से ऐसी इंक्वायरी से फायदा नहीं होगा। चैलेंजिंग स्पिरिट, कौन है भगवान, यानी कि यू योर सेल्फ आर थिंकिंग दैट देर इज नो गॉड, दैट दिस वट एवर ही विल ही इज अंडरस्टैंडिंग दैट इज नॉट गॉड, आई नो वॉट इज गॉड। आप समझ रहे हैं चैलेंजिंग स्पिरिट का मतलब, अपने मन में पहले से आप सोच रही हैं आई नो, लेकिन मैं पूछ रहा हूं जानने के लिए कि वो कितना गहरे पानी में है, तो यानी कि आप शिष्य हुए नहीं, देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बेनिफिट फ्रॉम दैट गुरु. और फिर ऐसा भी नहीं है, नो क्वेश्चंस, गुरुजी तो महान है, उनसे हम कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, नो क्वेश्चंस. गुरुजी मौन व्रत लिए हुए हैं, आप भी मौन व्रत लिए हुए हैं. नहीं, भगवान यह कह रहे हैं परिप्रश्न है ना, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू शुड सबमिसिवली इंक्वायर, जानने के लिए पूछ. गुरुजी बताइए भगवान कौन है, कृपया मुझे बताइए. आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, इसलिए बताइए. तो अर्जुन बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं भगवद गीता में, कई बार तो उसने ऐसा ही पूछा है, भगवान आप ऐसा बोल रहे हैं कृष्ण कि आप ऐसे हुए, लेकिन मैं कैसे समझूं, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा है, तो आप बताइए. तो लगता है कि चैलेंजिंग स्पिरिट ने पूछा, लेकिन चैलेंजिंग स्पिरिट नहीं है, वो जानते हैं कि कृष्ण जो बोल रहे हैं वो सही ही बोल रहे हैं, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो प्लीज प्लीज एक्सप्लेन मी, दैट इज द मूड. परिप्रश्न इसे कहें, परिप्रश्न. एंड देन सेवया, और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम भगवान नहीं बनना चाहते. तो यदि हम केवल बस जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ओ जिससे कि मैं PhD हो जाऊं भगवद गीता में, भगवान को जान लिया मैंने, बस सिगार मुंह में है, भगवान को जान लिया, फिनिश्ड. अभी और क्या बचा है टॉपिक, भगवान को जान चुका, फिजिक्स जान चुका, मैथमेटिक्स जान चुका, नेक्स्ट कॉकरोच. ओके, कॉकरोच स्टडी करते हैं अभी, जैसे एक स्टडी टॉपिक है, एक फिजिक्स मैथमेटिक्स, ऐसे एक भगवान, ये भी खत्म हो गया, ये स्टडी भी कंप्लीट हो गया, अभी फिर नेक्स्ट कॉकरोच, जुगनू, पंखा, ये जो भी सो मेनी टॉपिक्स कैन बी देयर. तो ऐसे ही एक बस एक स्टडी की तरह से नो, भगवान को जानने का मतलब भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा मतलब भगवान के प्रतिनिधि की सेवा करके तो आप भगवान की सेवा करना सीखोगे. अगर आपका वहां पर सेवा करने का भाव नहीं है तो भगवान की सेवा करने का भाव कैसे आएगा. सो सेवया, सो दिस इज द वे. तो इन सबको और डिटेल में जाने से पहले हम पहले देखें तो गुरु के और लक्षण क्या हैं. आधारभूत लक्षण हमने आपको बताया, सबसे ज्यादा बेसिक फंडामेंटल लक्षण हमने जो बताया वो क्या बताया, विल यू ट्राई टू रिपीट. अभी तक हमने बताया ना कि भगवान, ओ गुरु जो है तत्वदर्शी इत्यादि बताया, कुछ परंपरा की बात कर रहे थे हम लोग, तो वो फंडामेंटल, मोस्ट फंडामेंटल क्वालिफिकेशन है गुरु की. क्या है वो क्वालिफिकेशन, कौन बताएंगे, एनी न्यू स्टूडेंट? यस, हाँ, परम सत्य को जानने वाला किस तरीके से, अपने आप स्टडी करके जिसने परम सत्य को जान लिया हो, माय गॉड, जिसने खुद परम सत्य से ये ज्ञान लिया हो या उसकी परंपरा में लिया हो, ऐसे मोस्ट फंडामेंटल क्वालिफिकेशन ऑफ ए गुरु. आप कल जाओ कोई भी आदमी बोले भगवान हम ये मानते हैं, क्यों, क्या मानते हैं आपका, आपने कहां से सुना है ज्ञान, कहां से लिया है, या तो बोलेगा मैंने सब अपने आप, मेरा ये विचार है, रिजेक्ट हिम, या बोले मेरे गुरुजी का ये विचार है. बहुत अच्छी बात है, आपके गुरुजी का ये विचार कहां से आया, कि उनको अपना आप ये विचार आया, रिजेक्ट हिम. जो भी जिसने अपने आप जहां पर भी आया वो स्टेज में, मेरे अपने आप आया या शास्त्रों का अध्ययन, हमारे गुरुजी बहुत लर्नड, संस्कृत में तो डबल PhD थे वो, इसलिए उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और अध्ययन करके ये सब निष्कर्ष निकाला, रिजेक्ट हिम, क्योंकि क्या संस्कृत की स्टडी से भगवान को समझा सकता है, वो भी तो अपने अपने द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान हो गया, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से. तो कोई आदमी यदि शास्त्रों को पढ़ रहा है लेकिन बिना गुरु की शरण में जाए पढ़ रहा है, रिजेक्ट हिम. ओके, सो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल क्वालिफिकेशन ऑफ ए गुरु, कि वो भगवान से शुरू होने वाली एक अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में उसने ज्ञान लिया होना चाहिए. फिर तद विज्ञानार्थम से गुरु विवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम. श्रोत्रियम, श्रोत्रियम यहां शब्द मतलब उसने गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान सुना हो. तो भगवान से जो आने वाला जो ज्ञान है उसे कहते हैं शास्त्र, शब्द प्रमाण, वेद. भगवान से जो आने वाला जो परिपूर्ण ज्ञान है वो हमारे वेदों में संकलित है. वेद का मतलब होता है ज्ञान. तो जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, वो किसी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नहीं है, तो जो खुद वेद शास्त्र हैं उनके अंदर बताया गया है कि ये जो सब वचन है, सब वाक्य है, सब जो ज्ञान है, वो सृष्टि के पहले से, सृष्टि के प्रारंभ से, सृष्टि के शुरू होने से पहले से सृष्टिकर्ता ने ये ज्ञान दिया प्रथम जीव को, जो ब्रह्मा थे जिन्होंने यहां ये सब क्रिएशन किया, तो उसका सब डिटेल दिया है शास्त्रों के अंदर खुद, किसका सोर्स क्या है। अपौरुषेय, इससे शास्त्रों का गया है अपौरुषेय, ये ह्यूमन ओरिजिन नहीं है इसका। और आप खुद इसको देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं कि शास्त्र कोई भी ह्यूमन बीइंग का दिया हुआ ज्ञान है तो वो इम्परफेक्ट होगा, क्योंकि वो खुद इम्परफेक्ट है, इसलिए उसको बदलने की जरूरत पड़ेगी, उसमें इम्परफेक्शन होंगे, गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगे, है ना। लेकिन हमारे शास्त्रों की खासियत है हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कोई भी चीज ले लीजिए परफेक्ट, उसमें ना तो कोई चेंज होता है, ना तो भगवद गीता के एडिशन बदलते हैं, ना तो उनको मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़ती है कि अभी साइंटिस्ट की डिस्कवरी नहीं आ गई अभी शास्त्रों को बदलना पड़ेगा, शास्त्र के अनुसार साइंटिस्ट को बदलना पड़ेगा, शास्त्रों को बदलना नहीं पड़ेगा, उन लोगों को बदलना पड़ेगा। तो अभी वो बोलते हैं कितने ग्रह हो गए, अभी 12 पहुंच गए, तो वो 12 होंगे, फिर कभी 10 होंगे, कभी 9 होंगे, वो लोग बदलते जाएंगे। वो पहले बोलते थे अर्थ फ्लैट है, अभी बोलते हैं सॉरी गलती हो गई, राउंड थी। तो पहले जो आप मूर्ख बनाया उसका क्या, लेकिन शास्त्र कभी ऐसा नहीं बोलते, शास्त्र में बिल्कुल श्योरिटी से बोला जाता है भूगोल, और भूगोल मतलब भूगोल ही रहेगी, वो हमेशा भूगोल भूगोल रहेगी, शास्त्र विल नॉट चेंज एंड यू विल कम टू नो दैट व्हाट एवर इज गिवन इज परफेक्ट। बताया गया इतने प्राणी हैं, इतने जीव हैं, ये ऐसा होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसा, आप देख सकते हैं हर चीज वैसी वैसी होती है, आप ट्राई करके देख लीजिए कुछ भी, गाय का गोबर शुद्ध है तो शुद्ध है, आज लोग पता लगा रहे हैं शुद्ध है, प्रिडिक्शन है ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, कलयुग का वर्णन है, आप 12वें स्कंध जाके देख लीजिए सटीक वर्णन, जो आप देख रहे हैं आज बिल्कुल वैसा वैसा हो रहा है, परफेक्ट, कहीं कोई गलती नहीं है। इसका मतलब जो शास्त्र को देने वाला होगा वो परफेक्ट आदमी होगा, तभी तो परफेक्ट दे पाया, यानी ह्यूमन बींग नहीं हो सकता, यानी कि भगवान होंगे, करेक्ट, और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि शास्त्र जो अपौरुषेय है वो साक्षात भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, और शास्त्रों में वर्णित है कि ये सब ज्ञान किस तरह से गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। भगवान भगवद गीता बताते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुहु। तो शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि परंपराएं कौन कौन सी हैं, सब बताया गया, ज्ञान भी बताया गया है, प्रोसेस भी बताया गया है, सब डिटेल बताया गया आपको, जिससे कि आप गलती ना करें। तो पद्म पुराण के अंदर बताया गया है कि 4 बोनाफाइड संप्रदाय हैं जिनके अंतर्गत ये वैदिक ज्ञान आता है। तो यदि पहले तो वैदिक ज्ञान भगवान को समझने के लिए, परफेक्ट समझने के लिए एकमात्र स्रोत है वैदिक नॉलेज, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया गया भगवान के बारे में और जीवों के बारे में ज्ञान है। तो अगर भगवान को समझना है तो वेदों को समझना होगा। बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों ने भी निष्कर्ष निकाला, यदि स्पिरिचुअलिटी भगवान को जाना है तो भारत जाओ, ये हमेशा से पूरे जगत में विदित है, अगर भगवान को समझना है तो भारत में जाओ, और भारत मतलब वैदिक वैदिक कल्चर, यही हमारी सबसे महत्वपूर्ण ट्रेजर है भारत का, ना कि एटम बॉम्ब। अमेरिका के पास ऑलरेडी बहुत सारे एटम बॉम्ब है, वो क्या आप करोगे, या मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, तो आप जितना सोच भी जितना आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऊपर बनाते हैं उतना तो अमेरिका में नीचे होती है, सो यू कैनॉट कंपेयर विद देम। तो भारत की गणना जो बाहर के देशों में होती है वो एक भिखारी की तरह से होती है, वॉट एवर वी मे से इन इंडिया स्टेइंग हेयर, बट जस्ट We can't compete with them. But भारत की जो अमूल्य अनोखी जो चीज है वो है उसकी वैदिक धरोहर, वैदिक ज्ञान, जिसके लिए वो सब लोग इतने उन्नत होने पर भी आते हैं भारत, जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन हम लोग हैं तो बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम लोग वो वेदों को छोड़ करके उनकी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं, उनके ऐसा बनाना चाह रहे हैं, ये प्रगति है। तो जो वैदिक धरोहर है, वैदिक ज्ञान है, तो भगवान को समझने का एकमात्र जो स्रोत है वो वैदिक नॉलेज है, और उस वैदिक नॉलेज के अंदर बताया गया है कि ये 4 ये जो ज्ञान है ये 4 बोनाफाइड संप्रदाय में आता है, एक श्री संप्रदाय, एक रुद्र संप्रदाय, एक कुमार संप्रदाय, और एक ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। संप्रदाय मीन्स लीनिएज, परंपराएं, गुरु शिष्य परंपराएं, जैसे BVM ये ऑथराइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि नहीं, रिकॉग्नाइज्ड है है, जी सेट है, ये सब सदापेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ना सब। अगर कोई अपना घर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल ले और बुक्स, सब बुक्स तो वही है, तो बोले हाँ आ जाओ हमने इंस्टीट्यूट खोल लिया, सब बुक्स पढ़ा शुरू कर दें उनको सबको, और फिर एक डिग्री मीन्स वॉट, एक लेटर पे एक प्रिंट करके अवार्डेड ऑन दिस डेट डिग्री ऑफ फलाना फलाना इंजीनियरिंग दे दिया आपको, शो हुआ 10 लाख रुपए खर्च करके मेरे को कागज मिल गया, एंड देन यू विल गो एंड अप्लाई, देर बी नो वैल्यू ऑफ दैट पेपर, भले ही आपने वो सब ज्ञान लिया हो, बट दैट इज अनरिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, अनरिकग्नाइज। तो ऐसे ही शास्त्रों को भी जानने के लिए देर आज रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज बाई शास्त्र इटसेल्फ, शास्त्र में बताया गया कि ये रिकग्नाइज संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं। फिर उनके अलग अलग आचार्यों का विवरण दिया है, कौन कौन आचार्य हैं जिन्होंने इसको फिलॉसफी को स्थापित किया है, तो उनके रेफरेंस दिए बिना कोई भी आदमी इंडिपेंडेंटली शास्त्रों को पढ़ नहीं सकता, शास्त्रों को समझा नहीं सकता, ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं शास्त्रों को जानता हूं। ही हैज टू टेक शेल्टर ऑफ दिस परंपराज एंड देयर टीचिंग्स, क्लियर। तो गुरु की सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, ही मस्ट फॉलो शास्त्र, ही मस्ट स्पीक फ्रॉम शास्त्र, ही मस्ट स्पीक फ्रॉम शास्त्र एंड ही मस्ट फॉलो शास्त्र। वो जो भी बात बोले वो शास्त्र का आधार पे होनी चाहिए, मन पे, मन के आधार पे नहीं होनी चाहिए। तो आजकल कितने सारे गुरु हैं जो नई नई बात निकाल रहे बिना शास्त्रों के रेफरेंस के, क्या है वो, आर्ट ऑफ क्राइम लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग। अभी क्या शास्त्र प्रमाण है आर्ट ऑफ लिविंग, कौन से शास्त्र ने बताया आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग भगवत गीता में बताया। आर्टिफिशियल ही करने से, विच शास्त्र सेज दैट बाय आर्टिफिशियली स्माइलिंग एंड लाफिंग एंड एंजॉइंग यू विल रियलाइज गॉड, एक्चुअली देयर एम इज नॉट एट ऑल टू रियलाइज गॉड एट ऑल। वन एग्जाम्पल, सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, दिस इज नॉट टू जस्ट इंसल्ट समवन, लेकिन आप यदि जाके स्पष्ट देखें, उनसे पूछें कि आप ये कौन से शास्त्र में से बोल रहे हैं, और शास्त्र को समझने की आपकी, आपने कौन से स्कूल में, ये 4 स्कूल हैं, इनमें से कौन से स्कूल में से आपने ट्रेनिंग ली है शास्त्र की, जब बताइए तो दे वोंट बी एबल टू टेल यू। या तो शास्त्र बोलेंगे शास्त्र में नहीं मानते, या तो शास्त्र को अपनी तरीके से मानते हैं बिना ये 4 परंपराओं के। हम भी भगवद गीता को मानते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि भगवद गीता कृष्ण ने नहीं बोली, सारी वैदिक परंपरा, सारे वैदिक आचार्य, सबके सब 4 के 4 स्कूल, सबके सब आचार्य इन 4 स्कूलों के मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवगीता बोली, लेकिन ये पंडित जी आए हैं ये बोल रहे भगवगीता में हम मानते हैं, हम कृष्ण में मानते हैं लेकिन हम कृष्ण को प्रिंस मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। व्यासदेव जी जो शास्त्र लिखे हैं वो भगवान मानते हैं, और तुम जो भगवान नहीं मानते, तुम वो प्रिंस मानते हो, क्यों भाई, तुम ज्यादा बड़े हो व्यासदेव जी से। तो ये सब फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि अगर भगवगीता का नाम नहीं लेंगे तो कोई आएगा ही नहीं उनकी बात सुनने के लिए, अगर राम और कृष्ण का नाम नहीं लेंगे तो कौन आएगा सुनने के लिए। आपको कोई कंपनी है, आपको कोई अपना प्रचार करना है, आपने मान लीजिए रेफ्रिजरेटर बनाया, आलोक पटेल एंड कंपनी, कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा उसको, उसके ऊपर आपको लेबल लगा गॉडरेज, झूठा करके लगा देना पड़ेगा गॉडरेज। कई बार ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसा नाम रखते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन वही निकलता हो, नाम अलग हो, स्पेलिंग अलग हो, क्योंकि नाम तो कम से कम मिलना चाहिए ना, जिससे कि लोग भ्रमित हो जाएं, ऐसा नाम रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसका सिक्का लगा है उसके बेस पर चलेगा। तो ऐसे ही ये ऊपर का कवर उतार करके अपनी बुक के ऊपर लगाए थे, यानी अपनी फिलोसफी के ऊपर नाम लगाए थे भगवदगीता का। हाँ, हम भी कृष्ण वही हम बात कर रहे हैं, जो भगवदगीता में कहे वही कह रहे हैं, लेकिन बात सब अपनी अपनी कह रहे हैं, बिना शास्त्रों के प्रमाण के, बिना आचार्यों के प्रमाण के अपनी अपनी बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं यही भगवदगीता है। आपको एंट्रेंस इस स्कूल में आप गए नहीं, आपको क्वालिफिकेशन नहीं है भगवदगीता के, आप समझे ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हैं। अगर कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब उसमें कोई एक पान के गले वाला आदमी चला जाए कि मैं जो है यहाँ पर एक स्पीच देना चाहता हूँ, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च चल रही है सेमिनार, और वो आदमी चला जाए, मैं भी चला, ये जो ये क्या बोलते हैं इसको डीएनए RECOM, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो बोलेंगे श्रीमान जी आप का जरा वो दिखाएंगे, आपने कहाँ से पढ़ा है, आपने ये आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने अब डीएनए के बारे में आपने कहां से पढ़ा है? बोले पानी गंदे बैठ बैठ के पढ़ा है। तो बोले आप पान बनाओ या बताओ आप, ये आपका जगह नहीं आने का। यहां पर आने के लिए पहले आपको एक कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जिसने एमएससी किया है वो इसके अंदर आ सकता है। वो उसको उसको क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी नहीं है पान के गले वाले को, कॉन्फ्रेंस में एंटर गेट के अंदर एंटर होने का अधिकार भी नहीं है। तो इसी प्रकार से शास्त्रों का भी एक नियम है। ऐसा नहीं कोई भी आदमी जिसको मन करे, घर में दादी जी ने शास्त्र पढ़ के सुनाया, दादी जी ने कहा, काका ने कहा, पापा ने कहा, उसके बेस पे शास्त्र हमने ऐसा समझा, ऐसा ऐसे हम मानते हैं, इस पर हम प्रश्न करते हैं। यू आर नॉट एंटाइटल्ड, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन शास्त्र लाइक दैट। तो शास्त्र को पढ़ने का एक प्रोसेस है, तरीका है। तो गुरु ने जो है ऐसी बोनाफाइड परंपराओं में खुद आकर वो ज्ञान लिया। आज का टीचर है वो पहले शिष्य रहा होगा ना, स्टूडेंट, तभी तो आज टीचर बन सकता है। बिना स्टूडेंट हुए टीचर बन सकता है? तो इसीलिए पहले उसको शिष्य होना पड़ेगा, यानी कि उसको भी उन सब नियमों का, योग्यताओं से गुजरना पड़ेगा। तो उसने गुरु शिष्य परंपरा में ये खुद ज्ञान लिया हो पहले तो, और वो इसको सटीक बोल रहा हो, लिया हो, लेकिन फिर उसमें अपना कोई ऐड कर रहा हो, तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो गया गुरु की तरह से। हम गुरु बोनाफाइड परंपरा में आ रहे हैं, हमने भगवद्गीता को सही सुना है, लेकिन आजकल कलयुग है, इसलिए कलयुग के अनुसार भगवद्गीता में कुछ चेंजेस की जरूरत थी, इसलिए मैंने कुछ दो श्लोक ऐड कर दिए इसमें। भगवद्गीता में लिखा है, मता परतरम ना अन्यात किंचित अस्ति धनंजय, कि मेरे से ऊपर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कोई नहीं है। लेकिन आज कलयुग है और विशेष रूप से हम गुजरात में रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पटेल बहुमल्य है, मैं हैं, इसलिए पटेलों के लिए एक अलग भगवान बनाना पड़ेगा। जो कि भगवान जो बोल रहे हैं कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन पटेलों के लिए तो सबसे ऊपर कुछ चाहिए ना, पटेल में से जो, तो इसलिए हम एक अलग भगवान बनाते हैं जो भगवद्गीता भगवान बोल रहे हैं, लेकिन कलयुग के अनुसार थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा है कि ये जो भगवान बोल रहे हैं अव्यक्तम अक्षरम इति उक्तः तम आहु परणाम परमाम गति, कि जो अक्षर है वो मेरा है, लेकिन कलयुग में एक और अक्षर धाम है जो भगवान कृष्ण के धाम से भी ऊपर है, जो भगवान से भी ऊपर है, ऐसे हम एक नया एक एडिशन कर दे रहे हैं। व्हाट ए नॉनसेंस। भगवान कह रहे हैं कि जो परम धाम है वो मेरा धाम है और मेरे से ऊपर कोई नहीं है। मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो भगवान कृष्ण तो ओल्ड मैन, ओल्ड फैशन, द्वापर युग, तो अभी नया जमाना आया है, नया जमाना, नया भगवान, उनका ज्ञान पुराना था, अभी नया ज्ञान आया है, इसमें भी शोध कार्य चल रहा है। तो ये सब बकवास नहीं होनी चाहिए ना। भगवान मीन्स नित्य, वो जब करोड़ों साल पहले जब प्रकृति प्रारंभ हुआ तब भी वही भगवान था और अभी भी वही भगवान है। ऐसा नहीं कि अभी वो भगवान पुराना भगवान है, अभी नया भगवान आ गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। कि उनको नहीं पता था आज से वो 5 साल पहले जो लोग थे वो सब लोग कृष्ण को मानते थे, वो सब गलत, उनको किसी को पता नहीं था। अभी समय चेंज हुआ इसलिए नया भगवान आया, ऊपर वाला, हाई वाला। तो गुरु मीन्स इंपॉर्टेंट, कि वो शास्त्र का प्रमाण लेके बोले। तो हर नए नए अवतार निकल रहे हैं, हर दिन, वो एक स्टैटिस्टिक है, हर दिन 2 या 3 भगवान बनते हैं, हर रोज स्टैटिस्टिक्स है, हर रोज संख्या बढ़ जाती है उनकी, इतने भगवान पुराने जाते हैं, मर जाते हैं, नए नए आते रहते हैं। तो भगवान को ऐसे, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नहीं बनते ऐसे भगवान। तो ऐसे जो गुरु हैं, जो ऐसे तथाकथित अवतारों को भगवान मान लेते हैं, अपनी फैक्ट्री बना करके, मन की फैक्ट्री बना करके, साईं बाबा भगवान, क्यों भाई भगवान, सोना निकालते हैं, कितना सोना निकालते हैं, इतना सा सोना निकाल चुमुट्ठी पर। तो वो जो जिसने इतनी सारी माइनों में सोना रखा हुआ है ऑलरेडी, जिसमें थोड़ा सा चुरा करके वो साईं बाबा जी निकाल के दे रहे हैं, तो जिसने इतना सारा सोना बनाया वो भगवान नहीं, वो 2 ग्राम सोना निकालने वाला भगवान, जिसने वो सब माइंस बना दिया सोने का, वो उसका क्या भाई, उसने क्या गलती किया कि वो भगवान ने, और ये साईं बाबा जी थोड़ा सा सोना निकाल करके भगवान। तो ये सब जो झूठ है, वो गुरु जो है वो ये सब बकवास नहीं करता, वो शास्त्र में से बोलता है। कहाँ है शास्त्र में साईं बाबा भगवान है, कहाँ है नाम शास्त्र, कहाँ, कोई भी अवतार होता है, कोई भगवान होता है, उनका विवरण शास्त्र में होता है। इस समय में ये आएंगे, एक ये कार्य करेंगे, सब होता है। अभी एक आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था भौतिक दृष्टि से, परमानेंट एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप जानते हैं सेक्रेटरी होना बहुत बड़ी पोस्ट है, और ही वॉज अ परमानेंट एडवाइजर फाइनेंस मिनिस्ट्री में, परमानेंट एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्टर। और वो बांग्लादेश से था, जिसमें कोई लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं, उसमें से वो इतना बड़ा बुद्धिमान निकल गया। और बांग्लादेश में हर गांव गांव में 2-3 भगवान होते हैं। तो एक बार उस आदमी से डिस्कशन चल रहा था, तो उसने बोला कि वो हमारे गांव वाले जो हैं वो भगवान हैं। तो उनसे पूछा गया कि शास्त्रों में कहाँ वर्णन है कि वो भगवान है। तो आदमी 2-3 दिन के बाद में आया, बोला मैंने पता लगा लिया कि वो कैसे शास्त्र में कहाँ दिया हुआ है भगवान, वो दिखाओ। तो बोले वो विष्णु सहस्र नाम एक शास्त्र का अंग है। विष्णु मतलब शास्त्र में से भगवान विष्णु के सभी नाम दिए हैं, विष्णु सहस्र नाम दिए हैं। तो बोले दिखाया उसमें, तो जैसे सहस्र नाम एक नाम था जगन्नाथ, तो बोले ये देखो सहस्र नाम में लिखा है जगन्नाथ, उसका नाम ही जगन्नाथ ही है, इसलिए वो भगवान। तो यहां पर कितने लोग हैं जिनका नाम गोपाल है, अरविंदाक्ष है, कृष्ण के ऊपर किसके नाम है, किसी यहां पर कृष्ण के ऊपर क्या नाम है आपका है, चंद्रमोहन। ओके, डायरेक्ट कोई किसी का भगवान कृष्ण से रिलेटेड नाम है, मदन मोहन क्या है, विष्णु आप भगवान हो भाई, आप यहां बैठ गया करो, आप ही पूजा करनी चाहिए यहां आके बैठ। यस, आप डिक्लेयर करो आई एम गॉड, आई एम विष्णु, मेरा नाम शास्त्र में दिया गया, जगह जगह विष्णु सहस्त्र नाम इतना सारा डिक्लेयर कर रहे हैं, आप लोग नीचे क्यों बैठे आप लोग, यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी, यू कैन बिकम वर्ल्ड फेमस। सी ही सच इंटेलिजेंट मैन, लेकिन इडियट इतना है कि भारत में तो हर घर घर में भगवान है, फिर तो जस्ट बाई नेम ही विल बिकम गॉड। ऐसे ही आजकल कुछ गुजरात में सबसे बड़ा संप्रदाय आप लोगों का, वो तो उनको बोलो कि शास्त्र में कहाँ लिखा है, बोलो ये तो यहाँ लिखा है, वो मिला करके अक्षर मिला करके ये यहाँ नाम हो गया, उनके पिता ने उनका नाम वो रख दिया तो वो नाम हो गया, बस वो भगवान हो गया। इसलिए भगवान की एक्टिविटीज हैं, जगह का स्थान है, क्या करेंगे, वो सब भी विवरण है ना, वो देखो ना। तो लाइक दैट, सो गुरु जो है सब बकवास नहीं करता है, गुरु जो है वो शास्त्रों को यथारूप जानता है। और देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ब्रह्मनिष्ठम, वो भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है, उसके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं होता और कोई हेतु नहीं होता, वो गुरुवाद वो गुरुगिरी नहीं करता है, वो गुरु जीविकोपार्जन के लिए गुरु नहीं बन गया है, मेडिकल प्रोफेशन, बार्बर प्रोफेशन, गुरु प्रोफेशन इस तरीके से नहीं लिया है उसने, ये भी अच्छा धंधा है, आजकल बेस्ट धंधा है, इतना तो किसी भी नहीं है, इतना पैसा आसानी से किसी में नहीं मिलता है। थोड़ा श्लोक याद कर लो और अपने साथ ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुला लो, आपका यदि कंठ अच्छा है और आपको जरा स्टाइल से बोलना आता है, थोड़ा मसाला लगा करके तुकबंदी की तरीके से, और आपको थोड़े श्लोक याद हो गए हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं। भागवत सप्ताह करो, बस बच्चों को दोनों स्कूल में पढ़ाओ, फ्लाइट से उड़ो, मजा आ जाएगा। तो और थोक में शिष्य बनाओ, 10,000 10,000 के 10,000, हाँ शिष्य भवस्तु, सब शिष्य बन जाओ, बन गए सब थोक में। तो गुरुगिरी है वो, यानी गुरु जो है वो एक प्रोफेशन नहीं है। तो जो आदमी गुरु का प्रोफेशन कर रहा है वो गुरु नहीं है, गुरु मतलब जो केवल भगवान की सेवार्थ ये कार्य कर रहा है, लोगों को भगवान तक पहुंचाने के लिए मात्र ये कार्य कर रहा है, किसी उसको वो कोई बिजनेस नहीं करता, उससे कोई उसको अपनी जीविकोपार्जन से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आपको भगवान के बारे में ज्ञान दूंगा, मेरी फीस इतनी है, नो, देयर कैन नॉट बी सच थिंग। वो उसकी जीवन का एकमात्र हेतु है भगवान की सेवा करना, उसका जीवन समर्पित है उसके लिए, ही हैज गॉट नो अदर गोल इन द लाइफ, सिंपली टू सर्व कृष्ण भगवान। तो ये प्राइमरी क्वालिफिकेशंस हैं, आप इनके ऊपर बेस पर ध्यान रखिए कि कौन गुरु है कौन नहीं है। और जो गुरु नहीं है, सबसे पहले तो गुरु वो नहीं है जो भगवान को की तरफ आपको ले जाने के अलावा कुछ और हेतु के लिए आपको शिक्षा देता हो, कि मैं गुरु हूं, क्यों गुरु है, क्योंकि मैं आपका भाग्य बता सकता हूं, क्योंकि मैं आपकी बीमारी दूर कर सकता हूं, या मैं आपका बिजनेस में अच्छा बढ़ोतरी करवा सकता हूं, ये सब जो आदमी करता है काम वो गुरु नहीं है। गुरु का मतलब जो भगवान तक आपको ले जाए वही गुरु है। फिर गुरु का जो करैक्टर होता है वो सबलाइम होता है, उसको अपनी इंद्रियों पर पूरा वश होता है, वो इंद्रियों का दास नहीं होता, क्योंकि जो इंद्रियों का दास होगा भगवान का दास नहीं हो सकता। तो गुरु मतलब भगवान का दास, अगर वो अपनी इंद्रियों का ही दास है अभी तक, तो भगवान का दास कैसे बनेगा। तो गुरु जो है वो उसका जो करेक्टर है परफेक्ट होना चाहिए, इंद्रियों पर परफेक्ट कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं बड़े बड़े लेक्चर दे रहे और अपना अंदर का जो जीवन है वो सब कुकर्मों से भरा हुआ है। इस करेक्टर शुड बी परफेक्ट। उसको शिष्य बनाने में प्रशंसा के लिए बहुत सारे शिष्य हो जाएंगे, मेरा नाम ख्याति हो जाएगा, ये उसको इच्छा नहीं होनी चाहिए। पैसा एकत्रित करने की इच्छा इत्यादि, ये सब भौतिक लेवल पर नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए भगवान की सेवा। उसे कहते हैं तत्व दर्शन, जो भगवान की सेवा में पूरी तरह से सुव्यवस्थित रूप से स्थित है, मैच्योरली उसमें रचा बसा है पूरा भगवान की सेवा में, उसे कहते हैं ब्रह्मनिष्ठम। तत्व दर्शन, उसने दर्शन किया है। कई बार लोग सोचते हैं दर्शन किया है मतलब हमें ऐसा गुरु चाहिए जिसने भगवान को देखा है, तो लोग पहले आगे प्रश्न पूछते हैं आपने भगवान को देखा है, क्योंकि हमें ऐसा गुरु चाहिए जिसने भगवान को देखा हो। तो मान लीजिए मैं बोल भी दूं कि मैंने भगवान को देखा है तो क्या उससे फर्क पड़ेगा, आप कैसे समझेंगे कि मैंने भगवान को देखा है? तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है, फूल्स, ऐसे लोग के चक्कर में आते हैं जो बोलते हैं हाँ हाँ मैंने भगवान को देखा है, अरे वाह तो आप भगवान या आप गुरु क्योंकि आपने भगवान को देखा है। तो भगवान को देखा है और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी वही अपना भौतिक कार्य कर रहे हैं, वही बिजनेस, वही धंधा, वही भौतिक इंद्रियता में लिप्त। तो भगवान को देखना अक्षरधाम को देखना या कुतुब मीनार को देखना, ताजमहल को देखना, ऐसा नहीं है। हम दिल्ली जा रहे हैं छुट्टियों में, किस लिए? आगरा जा रहे हैं, किस लिए? ताजमहल देखने के लिए। इस तरह से देख के आ गए, हाँ देख के आ गए, खत्म काम, भूल गए अभी। तो भगवान को देखना ऐसा नहीं है, भगवान को देख लिया, देख लिया, अभी खत्म, भूल गए, दूसरी चीज करेंगे, अभी दूसरा कुछ देखेंगे। भगवान को देखना ऐसा देखना नहीं है। अगर किसी ने वास्तव में भगवान को देखा है तो उसको और कुछ देखने का फिर रुचि रहेगा ही नहीं, फिर वो बस भगवान की सेवा करता रहेगा हमेशा, भगवान में ही दिन रहे, फिर वो क्यों अभी भी इंद्रिय भोग करना चाहेगा? इसका मतलब उसने भगवान को देखा ही नहीं है। तो भगवान को देखने का मतलब जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसे कहते हैं उसने भगवान को देखा है, तभी तो भगवान की सेवा में रत है 24 घंटे। अगर उसने भगवान को देखा नहीं है, भगवान को देखा नहीं है मतलब भगवान के साथ अपने संबंध को अनुभव नहीं किया है, तो वो कैसे निष्काम भाव से पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर सकता है और उसमें आनंद से स्थित हो सकता है? अगर उसको रेसिप्रोकेशन नहीं है भगवान के साथ तो कैसे टिक रहा है, कैसे कर रहा है बिना किसी कामना के? इसे कहते हैं तत्वदर्शी, जो निष्काम भाव से सुव्यवस्थित रूप से भगवान की सेवा में स्थित है, ऐसा व्यक्ति गुरु बनने लायक। तो ये है गुरु की परिभाषा, ऐसे हमें खोज करनी है। तो ये जो इस्कॉन है ये ऐसी बोनोफाइड गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। आप भगवद गीता में भूमिका के अंतिम पृष्ठ पे देखेंगे, उसमें विवरण दिया है परंपरा का। ब्रह्मा से हमने बताया, जो हमारी परंपरा है वो ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुई, मतलब कृष्ण भगवान, तेन ब्रह्मा हिदाय आदि कवि, उन्होंने ब्रह्मा जी को ये प्रारंभ में ज्ञान दिया और फिर ब्रह्मा जी से ये ज्ञान नारद मुनि, नारद मुनि से व्यासदेव, व्यासदेव जी से मध्वाचार्य और उसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद, पीछे आप देख सकते हैं जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, आप जानते होंगे, आगे उनका विग्रह भी रखा है मंदिर में, और उन्हीं की परंपरा में ये मूवमेंट चला आ रहा है। तो ये एक बोनाफाइड परंपरा है, ये कोई मनमाने ढंग से बनाया हुआ ज्ञान या तरीका नहीं है। और आप यदि प्रभुपाद जी का जीवन भी देखेंगे, आप जैसे जैसे उनके लिए हमें पढ़ेंगे या उन लोगों को सुनेंगे जो उनके साथ रहे हैं, तो ही वॉज ए परफेक्ट सेंट, और उनके कोई भौतिक स्तर से पूरी तरह से ऊपर उठे। 70 साल की उम्र में जाकर अमेरिका गए किस लिए? प्रचार करने के लिए, भगवान का शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए। वो भूमिका के अंत में लिखते हैं, यदि हमारे इन प्रयासों से एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन सका तो हम अपने को सक्सेस मानेंगे। तो उनका कोई ऐसा इच्छा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा संत नाम हो जाए, ऐसा कुछ। जस्ट ऑलवेज जस्ट इवन वन डिवोटी दैट विल बी सक्सेस। तो इस तरीके से ये जो संस्था है ये भगवान के विषय में शुद्ध ज्ञान देने के लिए है। तो आप लोग सीरियसली इसको समझें, ये कोई और एक संप्रदाय नहीं है, और एक मत नहीं है, ये एक बोनाफाइड मत है। और ऐसा नहीं कि हर लोग बोलते हैं बोनाफाइड है, हर लोग अभी सब बोल रहे हैं एक आदमी चोर है और बहुत सारे वो चोरी बोल रहा है कि चोर 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 चोर, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई चोर है कौन? पुलिस वाला ही बोल रहा है चोर चोर, चोर ही बोल रहा है चोर चोर, आके है चोर कौन है? तो सही बात है, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसमें से कोई चोर तो होगा ना और कोई पुलिस वाला होगा, ऐसा तो नहीं कि सब चोर है। तो अगर सब संप्रदाय वाले उल्टे सीधे बोल रहे हैं कि हम ठीक है हम ठीक है हम ठीक है, ऐसा हो सकता है? सब बोले हम ठीक है हम ठीक है हम ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं कोई भी ठीक नहीं है। तो आपको उसमें से ढूंढना है, फिर उसी के लिए मार्ग निर्देशन है। तो इसलिए आप समझिए इस फिलॉसफी को गहराई से, और न केवल समझिए बल्कि उसको अपनाइए, समझिए। कई बार स्टूडेंट्स आते हैं, हमको जानना है आपके बारे में, खूब जानना है, और लिखते हैं फिर, हाँ आप किसको भगवान मानते हैं? कृष्ण। ओके, जस्ट मिनट, लेट मी राइट डाउन, कृष्ण इज गॉड। अच्छा, कृष्ण कितनी रानियां थी? 16,000। हाँ, एक मिनट, जस्ट मिनट, 16,000। ओके, देन एकेडमिक स्टडी, क्योंकि इनको पीएचडी करना है कृष्ण के ऊपर, इसलिए फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं कृष्ण के ऊपर, फैक्ट्स, जिससे एक पेपर प्रेजेंट करेंगे कि हुआ कृष्ण। ऐसा कई बार स्टडी करते हैं जानने के लिए, नोइंग फॉर द सेक ऑफ नोइंग। तो वो कैसा है, हनी बॉटल को बाहर से चाटना, किसी को बोले भाई आपको हनी टेस्ट करना है, हनी कैसा होता है पूछो, तो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, हनी ऐसा होता है, उसका रंग ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ बोल रहा हूँ, और हनी की बॉटल रखी है, आप उसको पूछे जा रहे हैं मुझसे हनी कैसा होता है, और फिर बॉटल को उठा रहे हैं, और फिर देख रहे हैं हनी को, चारों तरफ से निहार रहे हैं, नीचे से ऊपर से, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं उसके बारे में, और फिर चाट भी रहे हैं बॉटल को बाहर से, हैं? तो आप ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये सब करने से भी क्या कभी आप हनी के टेस्ट को जान पाएंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप सुनो ये क्या है भाई, हनी है, अच्छा ये कैसा होता है, बहुत मीठा होता है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा, तो फिर आप उसको खोलिए सुनने के बाद कि अच्छा ऐसा होता है, खोलिए और निकालिए हनी को, और फिर जीप पर रखिए, तो आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे हनी कैसा होता है। तो ये जो लोग एकेडमिक स्टडी करते हैं, भगवद्गीता हम सुनने जाते हैं, लेक्चर सुनने जाते हैं, किस लिए? ज्ञानवर्धन के लिए, केवल ज्ञानवर्धन के लिए, जिससे हम लोग बता सके हम भी जानते हैं कृष्ण को। तो वो नहीं, खुद इसको अपने जिम्मे उतारने से, अपने जिम्मे इसको अनुभव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जिम्मे इसको उतारना पड़ेगा, तब आप भी आनंद को चख सकते हैं, भगवान की सेवा का जो आनंद है उसको अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए समझिए और अपने जीवन में इसको अपनाइए, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न किसी का? चैलेंज हो सकता है, हम प्रयास करेंगे उत्तर देने का शास्त्रों से। यस, आत्म साक्षात्कार मतलब आत्म को जानना, आप अपने को अगर देखना चाहते हैं तो जैसे सब सुबह सूरज निकलता है, अभी रात हो रही है मान लीजिए, और ये लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मून चंद्रमा भी नहीं, अमावस है, बिल्कुल डेंस डार्क। आपने कभी अनुभव किया है अमावस से बाहर? हमेशा लाइटों में रहते हैं, कभी पता ही नहीं होगा अमावस का मतलब क्या है, डेंस डार्क, तो अपने को भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब सुबह को सूरज निकलता है तो आप सूरज को देखते हैं, और सूरज के प्रकाश में अपने को देखते हैं। उसी तरीके से आत्म साक्षात्कार मतलब भगवान को देखना, और भगवान को देखने के साथ साथ अपने को देखना, भगवान को जानने के प्रकाश में अपने को देखना, या अपने को देखना और फिर उसके संबंध में उससे समझते हुए भगवान को देखना। तो आत्म साक्षात्कार मतलब खुद को जानना, भगवान को जानना, अपने और भगवान के बीच में संबंध को जानना, और न केवल जानना उसके अनुरूप जीना, उसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। yes. कोई गुरु थे नहीं। हाँ, देखिए, एक होता है ऑनररी डिग्री, जानते हैं ऑनररी डिग्री, आई थिंक जब यहां पर आए थे वो, कोई भी बड़ा आदमी होता है किसी फील्ड में तो कभी कभी उसको रिस्पेक्ट की तरीके से ऑनरेबल डिग्री देते हैं उसको, बिना पढ़ाई एडमिशन लिए, बिना पढ़ाई के, बिना उसको ऑनरेबल डिग्री देते हैं। अभी कोई विद्यार्थी सोचे अरे भाई ऐसी डिग्री मिलती है ऑनररी भी, तो मैं पढ़ू ही नहीं, मेरे को भी ऐसी डिग्री मिल जाएगी, तो फिर तो कोई एडमिशन ले नहीं, सब लोग बैठ रहे हैं, वो दिन आएगा जब मेरे को भी ऑनरी डिग्री दी जाएगी। सो एक्चुअली इफ यू गो इन डिटेल दे ऑल्सो हैड ए गुरु, नॉट दैट, बट इवन इफ यू थिंक, इवन इफ यू एक्सेप्ट दैट दे डिडंट हैव गुरु, सो देर आर सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस आर नॉट टू फॉलोड, एक्सेप्शंस आर नॉट फॉर फॉलोइंग, जनरल रूल इज टू फॉलो। Whether they have asked anyone to follow that way?
Nobody has followed that way.
But they have also not preached. They have also not asked anyone to follow that way because that is not for following. But it is not for following. That's why they didn't preach, because it is not for following. It is only for them. They have not made any disciple. They have not preached. They are not guru, they are not teaching how to come. That's only for them. It is not, it cannot be followed. That's why they didn't preach. Who can directly come on the level of Narsingh Mehta? Anyone of you who is thinking he is, who is going to become Narsingh Mehta? Then why Shastras? Phir Shastra mein Bhagwan jo is sab gyan diye, aisa karo, Guru Ashraya, Bhagwan ne bataya, Guru Ashraya. तो यदि भगवान भी जानते हैं नरसिंह मेहता को, वो उन्हीं के भक्त है ना, तो अगर भगवान ऐसा क्यों नहीं लिख दिए कि गुरु आश्रय इज एन ऑप्शन, आप जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, भगवान को नहीं पता कि ऐसा पॉसिबल है, देन व्हाई कृष्णा इज नॉट राइटिंग लाइक दैट? क्यों बोले भगवान तस्मात गुरुम प्रपद्येत, प्रपद्येत मीन्स मस्ट गो, तो भगवान को नहीं पता कि ये भी तरीका है, पता है ना हमसे ज्यादा पता, उन्हीं को पता है, वही तुम्हारे स्वामी है, तो विच इज बेटर, विच इज सेफ एंड विच इज परफेक्ट टू फॉलो? आप भगवान तक पहुंच जा रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि गुरु के पास जाओ, दिस इज सिंपल कॉमन सेंस दैट सो वी शुड फॉलो हिम। अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं, यही डिस्क्वालिफिकेशन है, दैट मीन्स यू डोंट वॉन्ट टू सर्व हिम, बिकॉज सर्विस का पहला लक्षण है यू वॉन्ट टू हियर एंड फॉलो हिम। तो अगर कोई आदमी हट बना के बैठा है, मैं तो नरसिंह मेहता को ही फॉलो करूंगा, मैं तो गुरु बनाऊंगा नहीं, बाई दिस वेरी मिसअंडरस्टैंडिंग ही विल नेवर एवर बी एबल टू फॉलो नरसिंह मेहता एंड बी लाइक हिम, बिकॉज द वेरी रूट इज डिसओबीडियंस ऑफ भगवत गीता, एंड दिस डिसओबीडियंस इट सेल्फ इज इज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अप्रोचिंग गॉड।